धवला पुस्तक चौधवी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं सिद्धे विउद्धसयले अज्जत्थ बहित्थ बंधनु मुक्के भक्तिये अहम् नमिउं पुनो पुनो बंधनम् उच्छम्। आचार्य श्री कुनकुन आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणाखंड, और उसके 14वें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 88 पर हम आगे 88। कल हमने पूरी रिवीजन की थी वर्गणा संबंधी क्या चल रहा था। अब यहाँ अपनी कौन सी वर्गणा चल रही याद है? बादर निगोद वर्गणा। बादर निगोद वर्गणा। तो बादर और निगोद वर्गणा में हमने क्या देखे थे? भेद देखे थे, स्कंध, अंडर, आवास, कुलवी और देह, यानी निगोद के शरीर, उसकी अभी यहाँ चर्चा चल रही थी कि क्षीण कषाय, क्योंकि जघन्य किसके होता है? तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में उन कौन सा जीव लेना? क्षपित कर्मोशिक से आया हुआ है, उसकी बात यहाँ उन्होंने, क्योंकि जघन्य की बात है इसलिए यहाँ पुलवी कितनी शेष है, तो आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण पुलवी है। फिर वो पुलवियों में जो देह है और देहों में जो जीव है उसकी बात अलग है। अब यहाँ यानी जिसको कहेंगे कि स्कंद में पुलवियां असंख्यात लोक प्रमाण ही होती है, ऐसा नियम नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ तो आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण पाए जाते हैं। अब यहाँ 88 पृष्ठ पर जो नया पैराग्राफ है वहां से हम पढ़ेंगे। अब पुलवियों का अवलंबन लेकर कितने ही आचार्य निगोद जीवों के मरण क्रम का कथन करते हैं, उसे बतलाते। पहले किसकी बात की थी? नंबर ऑफ जीव, वो इतना अधिक 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 होते, फिर संख्यात विभाग अधिक होते इस तरह से, और फिर अंत में जाकर असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा जीव मरते हैं, ये बात हमने देखी थी। अब पुलवियों की अपेक्षा से बात करेंगे। यथा क्षीण कषाय के प्रथम समय में मरने वाली, वो भ हुआ है, मरने वाली पुलवियां स्तोक है यानी कम है। दूसरे समय में मरने वाली, वो भी भ हुआ है, पुलवियां विशेष अधिक है। ये ऊपर लिखा है ना, मरंत पुलवियों। तीसरे समय में विशेष अधिक है। इस प्रकार आवली पृथक्त्व काल जाने तक, यानी कुछ आवली जाने तक, संख्यात आवली जाने तक विशेष अधिक, विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण आवली के असंख्यातवे भाग का प्रतिभाग स्वरूप है, यानी जितना संख्या है उसकी, उसको आवली के असंख्यातवे भाग का भाग दो तो एक भाग जितना है, यानी असंख्यातवा भाग अधिक होगा। इससे आगे विशेष अधिक के क्रम से मरण करने के अंतिम समय तक संख्यातवे भाग अधिक है। पहले में शुरुआत में कितना वो असंख्यातवा भाग अधिक था, पर उसके बाद संख्यातवा भाग अधिक होगा, उसको भी विशेष अधिक ही कहेंगे। अनंतर और उसके बाद जो विशेष अधिक, पहले असंख्यातवा भाग अधिक, बाद में संख्यातवा भाग अधिक, अब उसके बाद गुणश्रेणी यानी गुणित प्रमाण में अनंतर गुणश्रेणी रूप से मरण करने के प्रथम समय में संख्यात गुणी मरण को प्राप्त होती है। पुलवियों की बात है इसलिए संख्यात गुणा कहा। इस प्रकार क्षीण कषाय के काल में आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल शेष रहने तक संख्यात गुणी संख्यात गुणी मरण को प्राप्त होती है। कौन? पुलविया। और पुलवी में असंख्य जो अवली के एक एक पुलवी में असंख्यात देह है और देह में अनंत जीव है। हाँ देखो देखो आपका प्रश्न है संख्यात वे भाग और संख्यात गुणा में क्या डिफरेंस है। जैसे हम संख्यात के लिए 10 संख्या मान लेते तो 10 का संख्यातवा भाग यानी 10 का पांचवा भाग कितना होगा? 2। 10 का पांचवा भाग यानी 10 को 5 से भाग दिया उसकी संख्या 2 आ गई। तो संख्यातवा भाग अधिक यानी 10 था तो 12 हो जाएगा। पहले संख्यातवा भाग अधिक हुआ, पहले 10 थे, अब 12 हुए यानी क्या हुआ? उसका पांचवा भाग अधिक हुआ। हमने 10 माने थे पहले और उसमें से उसका पांचवा भाग यानी 2 अधिक हो तो 10 के बदले 12 का पहुंच जाए वो मरण को प्राप्त है। अब संख्यात गुणा का अर्थ क्या है? अगर हम उसको 5 गुणा करेंगे, 12 था ना, 12 तो संख्यातवा भाग अधिक था, अब 12 को 5 गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगी, समझ में? तो वो 10 से 12 हुआ और ये 12 से 60 हुआ, ये संख्यात गुणा हुआ। 12 को 5 गुणा कर दिया हमने, नहीं नहीं जहां तक पहुंचे उससे संख्यात गुणा करना। 12 तक पहुंचे थे उसको संख्यात गुणा करना। गुणित प्रमाण में पहला थोड़ा अधिक था। पूछना ऐसा कोई प्रश्न है तो, यानी संख्यात गुणी कब तक? जब तक 12वें गुणस्थान में आवली का संख्यातवे भाग प्रमाण काल शेष रहने तक। अब इससे आगे यानी वो 12वां गुणस्थान कितना छोटा है अंतर्मूर्त, फिर भी उसमें असंख्यात समय और उसका भी असंख्यातवा भाग शेष रहा तब तक। इसके आगे क्षीण कषाय के अंतिम समय तक असंख्यात गुणी मरण को प्राप्त होती। कौन? पुलविया। जहां असंख्यात गुणी पुलवियों का मरण कहा है वहां गुणकार आवली का असंख्यातवा भाग होना चाहिए, यानी वो आवली के असंख्यातवे भाग गुणा कहना है पुलवी के संख्या। अन्यथा क्षीण कषाय के अंतिम समय में आवली के असंख्यातवे भाग मात्र पुलविया उपलब्ध नहीं होती। अंतिम समय में कितना है तो आवली के असंख्यातवे भाग ही शेष रहती है, इसलिए उसके पहले गुणकार क्या है? अवली के असंख्यातवे भाग गुणा गुणा गुणा। इस विधि से जाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में जो आवली के असंख्यातवे भाग मात्र पुलविया मरने से अवशिष्ट रहती है वे पीछे द्विचरम आदि समयों में नष्ट हुई पुलवियों से असंख्यात गुणी शेष रहती है। अंतिम समय में कितनी शेष रही? तो आवली के असंख्यातवे भाग जो शेष रही वो उल्टे क्रम से हम द्विचरम समय में कितनी थी उससे असंख्यात गुणी है, बस इतना समझना। और उस असंख्यात का प्रमाण आवली का असंख्यातवा भाग है। अन्यथा गुणश्रेणी मरण नहीं बन सकता। ये गुणश्रेणी निर्जरा तो सुनिए, गुणश्रेणी मरण क्या होता है? जितनी पहले समय में मरण को प्राप्त हुए उससे असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात। गुणित प्रमाण में प्रति समय गुणित 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 उसको कहेंगे गुणश्रेणी। गुणश्रेणी का अर्थ थे गुणित प्रमाण में पंक्ति रूप जो कुछ वहां हो रहा है। क्या क्या हाँ एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण देह होते हैं, किंतु यहाँ यह जो पुलवियों का आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण गुणकार कहा है वह घटित नहीं होता, क्योंकि इस कथन से क्षीण कषाय के अंतिम समय में नष्ट हुई पुलविया पल्लवम के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होती है। कारण कि जगन्य परिता संख्यात का विरलन कर और आवली के असंख्यातवे भाग को विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति देकर परस्पर गुणा करने पर भी पल्लवम के असंख्यातवे भाग प्रमाण की उत्पत्ति होती है। यानी वो गुणकार के बारे में उन्होंने वो क्या घटित होता है क्या नहीं घटित होता है उसके चर्चा की है। क्योंकि अगर यह असंख्यात विभाग, असंख्यात विभाग इतने लंबे काल तक वो असंख्यात गुणा कहेंगे तो उसका सबकी टोटल शुरुआत में पल्ले के असंख्यात विभाग आ जाएगी, परंतु वो घटित नहीं होता। बस इतना कहना है, पुलवियों के आधार से जो कथन किया है वो घटित नहीं होता, ऐसा इनका कहना है। शंका, ये निगोल जीव यहाँ क्यों मरण को प्राप्त होते हैं? समाधान, क्योंकि ध्यान से निगोद जीवों की उत्पत्ति और उनकी स्थिति के कारण का निरोध हो जाता है, यानी उनकी उत्पत्ति घटती है और वो तो रहते नहीं, वहां निकल जाते हैं, अपने अपने मरण से मरते हैं। शंका, ध्यान के द्वारा अनंतानंत जीव राशि का हनन करने वाले जीवों को निवृत्ति कैसे मिल सकती है? यानी उनको मोक्ष कैसे होगा? इतनी हिंसा हो रही है ना, ये उनका प्रश्न है। हाँ, आपको यही प्रश्न आया। देखो क्या कहते हैं, समाधान, अप्रमाद होने से। देखो वो हमने हिंसा का, हिंसा की डेफिनेशन क्या है मालूम है? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त यानी वो असावधानी के कारण, जो प्रमत्त दशा के कारण जो प्राणों का विघात होता है उसको हिंसा कहते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं, वहां तो इतने जीवों का हनन हो रहा है तो निवृत्ति कैसे मिलेगी उनको? तो क्या समाधान, अप्रमाद होने से, यानी उनकी अप्रमत्त दशा है। शंका, अप्रमाद किसे कहते हैं? समाधान, पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ती और समस्त कषायों के अभाव का नाम अप्रमाद है। इनका भी अभाव हो गया है क्योंकि वो तो ध्यान की दशा है, यानी वो तो ये पालन करने के प्रमाण भी नहीं है, यानी ऐसे परिणाम भी वहां नहीं है, उसको अप्रमाद कहा। और वो जहां उसका विद्यमानता है वो प्रमाद हो जाएगा, यानी अप्रमाद किसको कहना है? तो इन सब का अभाव का नाम अप्रमाद है और उसके सद्भाव का नाम प्रमाद है। शंका, प्राण और प्राणियों के नियोग का नाम हिंसा है। प्राण और प्राणी, प्राणी से उसके प्राणों को दूर करना, उसको हम हिंसा कहेंगे। उसे करने वाले जीवों के अहिंसा लक्षण पांच महाव्रत कैसे हो सकते हैं? यानी पांच महाव्रतों का स्वरूप क्या है? अहिंसा, अहिंसा ही उसके मेन है ना, उसी को पालन करने के लिए पांच महाव्रत है। तो प्रमाद दशा में पांच महाव्रत है तो उनकी अहिंसा कैसे हो सकती है? उनका प्रश्न है उल्टा। समाधान, नहीं, क्योंकि बहिरंग हिंसा आश्रव रूप नहीं होती। क्या कहा? बहिरंग यानी बाह्य में जो कुछ है वहां पर, हाँ वो आश्रव नहीं है। आश्रव तो जीव के परिणामों में होते हैं। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, क्योंकि बहिरंग हिंसा का अभाव होने पर केवल अंतरंग हिंसा से सिक्त मत्स्य के बंध की उपलब्धि होती है। क्या कहना चाहते हैं? बाह्य क्रिया नहीं भी हुई किसके? वो तंदुल मत्स्य के, सिक्त मत्स्य ने, वो तंदुल मत्स्य, उसके तो बाह्य बिल्कुल उसने हिंसा नहीं की, उसके परिणामों में उसने वो सब, अरे मैं तो होता तो ऐसा कर देता, ये जो परिणाम उसके है तो उसके, उसको बंद हुआ कितना के? सातवें नरक का। यानी अंतरंग हिंसा और बहिरंग हिंसा उसकी बात उन्होंने की, यानी वो परिणाम। जिसके बिना जो नहीं होता है वह उसका कारण है। क्या कहा? जिसके बिना जो नहीं होते, अंतरंग हिंसा के बिना बंध नहीं होगा तो वही उसका कारण है। इसलिए शुद्ध नय से अंतरंग हिंसा ही हिंसा है, बहिरंग नहीं, यह बात सिद्ध होती है। यहाँ अंतरंग हिंसा नहीं है क्योंकि कषाय और असंयम का अभाव है, क्योंकि ध्यान दशा है और वहाँ ना कषाय है और ना ही असंयम है, कहा भी है। अब यहाँ ऊपर जो दो नंबर का एक एक हम पढ़ेंगे, दो नंबर को पहले पढ़ेंगे। जियदु मरदु अजीवो अयदाचारस्स निश्चयो बंधो पयदस्सनत्थि बंधो हिंसामित्तेन समिधि। चाहे जीव जियो चाहे मरो, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले, अयत्नाचार यत्नाचार यानी सावधानी, और ये असावधानी से प्रवृत्ति करने वाले जीव के नियम से बंद होता है। क्या कहा, इधर उधर देखते देखते चल रहा है, एक भी जीव नहीं मरा, फिर भी उसके असावधानी है तो उसको हिंसा का वहाँ बंद है। किंतु जो जीव समिति पूर्वक प्रवृत्ति करता है, ये प्रवृत्ति के काल में समिति पूर्वक चल रही है बात, यानी उसके परिणाम कैसे है कि कोई जीव नहीं मरे, सावधानी पूर्वक चल रहा है, उसके हिंसा हो जाने मात्र से बंध नहीं होता। अब तीन नंबर का ऊपर गाथा। सर्वासे दुपहंते जह दड़क वचोण भिज्जहि सरे ही तह समिदीहिण लिप्पै साहू काए सुइरियंतो। सरों की वर्षा होने पर, सर यानी बाण, शर शर कहते ना, यानी बाणों की वर्षा होने पर जिस प्रकार दृढ़ कवच वाला व्यक्ति वो डालते ना अंग पर चिलखत, क्या कहते हैं, बख्तर कहते हैं, हाँ। और आजकल के जमाने में क्या कहते हैं, वो कैसा जैकेट, हाँ बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ, हाँ। तो कहते हैं कि सरों की यानी बाणों की वर्षा होने पर जिस प्रकार दृढ़ कवच वाला व्यक्ति सरों से यानी बाणों से नहीं भिदता है, उसी प्रकार षटकायिक जीवों के मध्य में, क्योंकि वो सारे जीव सर्वत्र है, इनके मध्य में समिति पूर्वक गमन करने वाला साधु पाप से लिप्त नहीं होता, यानी वो कैसी समिति पूर्वक सावधानी पूर्वक उनकी क्रिया है। अब चार नंबर ऊपर। जत्थे वचरई बालो परिहारण्हु विचरई तत्थेव वज्जैसो पुण बालो परिहारण्हु विमुंचैसो। जहाँ पर अज्ञानी भ्रमण करता है, चरई यानी चरण करता है ना, भ्रमण करता है, कौन, बालो, बाल यानी यहाँ बालक नहीं लेना, अज्ञानी। जहाँ पर अज्ञानी भ्रमण करता है वहीं पर हिंसा के परिहार की विधि को जानने वाला भी भ्रमण करता है। क्या कहते हैं, जहाँ अज्ञानी भी चल रहा है उसी रास्ते पर मुनिराज भी चल रहे हैं, तो जो परिस्थिति उसके लिए वही उनके लिए है। तो कहते हैं कि परंतु वह अज्ञानी पाप से बंधता है और परिहार विधि का जानकार चाहिए, उससे मुक्त होता है। क्या क्या ऐड किया था, देखो वज्जै सो गुण बालो परिहारण्हु भी मुंचै सो, हिंसा के परिहार की विधि को जानने वाला, और परिहार विधि यानी हिंसा के ही परिहार विधि की बात है, विधि का जानकर नहीं चाहिए, जानकार चाहिए, यानी जानने वाला है ना, उसको जानकार कहेंगे। यानी हिंसा को टालने की विधि के जानकार जो है, इसे परिहार विशुद्धि भी ऐसा ही नाम आया है ना, परिहार विशुद्धि, वो हिंसा को टाल कर गमन कर सकते हैं, उससे मुक्त होता है। वो तो बंध अधिकार में भी है ना, वो तो आता है ना, वो तो मिट्टी में जो व्यायाम करता है, हाथ में मुदगर लिया है, बहुत से वृक्षों का नाश करता है, वो बहुत सारे उदाहरण दिए ना उन्होंने, फिर भी वो मिट्टी से नहीं लेपता, और जिसने तेल लगाया हुआ है हाँ वो लेपता है। ऐसे जिसके राग है उसी को बंध है, यानी यहाँ पर ये जो अज्ञानी जो है और हिंसा के, यानी वो जहाँ पर है वहीं पर हिंसा के परिहार की विधि को जानने वाला भी वहाँ पर ही है, वही भी वहाँ पर भ्रमण कर रहा है। अज्ञानी पाप से बंधता है और वो दूसरे वो पाप से नहीं बंधते, मुक्त हो जाते हैं। 5 नंबर, स्वयं ही अहिंसा स्वयमेव हिंसनम न तत्पराधीनमिह त्वयं भवेत् प्रमादहीनोत्र भवत्यहिंसकः प्रमादयुक्तस्तु तदैव हिंसकः। अने भवति अहिंसकः अने प्रमादयुक्त हिंसकः, अ लगाना, जहाँ ही लिखा ना ही अहिंसा, हिंसा और अहिंसा का उन्होंने कंपैरिजन किया। देखो 5 नंबर नीचे पढ़ते हम हिंदी में, अहिंसा स्वयं होती है और हिंसा भी स्वयं ही होती है, ये दोनों, यहाँ ये दोनों पराधीन नहीं है, जो प्रमादहीन है वह अहिंसक है, किंतु जो प्रमाद युक्त है वह सदैव हिंसक है। सदैव कहा, उसमें वो जीव मरे या नहीं मरे उसको हिंसक है वो, और उसका उसके बंध होगा हिंसा संबंधी। अभी 6 नंबर, वियोजयति चासुभिर्न च वधेन संयुज्यते शिवचन परोपमर्द परुष स्मृतेर्विद्यते वधोपनयनमभ्युपैति च परानिघ्नन्नपि त्वयायमतिदुर्गमः प्रशमहेतुरुद्योतितः। बड़ा है, क्या कहते हैं, कोई प्राणी दूसरे को प्राणों से वियुक्त करता है फिर भी वह बंध से संयुक्त नहीं होता, तथा परोपघात से जिसकी स्मृति कठोर हो गई है, अर्थात जो परोपघात का विचार करता है उसका कल्याण नहीं होता। तथा कोई दूसरे जीवों को नहीं मारता हुआ भी हिंसक पने को प्राप्त होता है, इस प्रकार हे जिन, तुमने यह अति गहन प्रशम का हेतु प्रकाशित किया है, अर्थात शांति का मार्ग बतलाया है। किसमें से लिया ये सारे? मूलाचार के हैं। यानी बारंबार परोपघात के ही स्मरण करता है, विचार करता है। यानी उसके मन में उसी के विचार चलते हैं। और पहले कौन सा लिया, जैसे भी उस उदाहरण देते ना, कोई प्राणी दूसरे को प्राणों से वियुक्त करता है, जैसे किसी डॉक्टर ने किसी ऑपरेशन किया, वो तो उसके प्राण बचाना चाहते, मारने का हेतु नहीं है, परंतु उसका प्राणघात हुआ। या ऐसा भी उदाहरण देते ना, कोई पत्थर फोड़ रहा है और उसके पत्थर उड़कर किसी को लगा, उसका तो क्या कार्य चल रहा था, उसका कोई उसमें विचार भी नहीं था, इस तरह से उसके उदाहरण दिए जाते हैं। अब आगे पेज नंबर 91 सेकंड, जो नया पैराग्राफ वहां से पढ़ेंगे, क्षीण कषाय के प्रथम समय से लेकर, ये सारे उन्होंने हिंसा के लिए सारे उदाहरण दिए मूलाचार के, क्षीण कषाय के प्रथम समय से लेकर बादर निगोद तब तक उत्पन्न होते हैं। देखो उत्पन्न होने की बात है, मरने के बाद क्या, पहले थोड़ा अधिक फिर गुणित क्रम से, अब यहाँ उत्पन्न होने की बात है। तो क्षीण कषाय काल के प्रथम समय से लेकर बादर निगोद जीव तब तक उत्पन्न होते हैं जब तक क्षीण कषाय के काल में उनका जघन्य आयु का काल शेष रहता है। वही नेचुरली है ना, क्योंकि जो अंतिम समय में मरने वाले जीव है वो जघन्य आयु के सहित जो उत्पन्न हुए है उतने पहले वो जन्मे थे, उसके बाद कोई जन्मेगा नहीं, क्योंकि जन्मा है तो उसके नहीं तो आयु उसके जल्दी खत्म हो जाए तो ये तो कदली हाथ से मरण हो जाएगा, वो आयु पूर्ण करके ही मरते। इसके बाद नहीं उत्पन्न होते क्योंकि उत्पन्न होने पर उनके जीवित रहने का काल नहीं रहता, इसलिए बादर निगोद जीव यहाँ से क्षीण कषाय के अंतिम समय तक केवल मरते ही है, ये उसका अर्थ है। इसलिए असंख्यात गुणा केवल मरते ही नए नए उत्पन्न नहीं होते, पर ऑलरेडी जो उत्पन्न हुए थे वो मरते चले जाते हैं। अंत में मिनिमम उनकी आयु निगोद की जो है उतनी जब शेष रहे तब वो, क्योंकि वो तो बारहवें गुणस्थान का भी असंख्यात भाग कहेंगे हम, इतना शेष रहे, क्योंकि हमने देखा ना पहले तो विशेष अधिक है, विशेष अधिक है, फिर संख्यात भाग अधिक है, संख्यात गुणा है, फिर असंख्यात गुणा है। तो असंख्यात गुणा के जो अंतिम समय में मरने वाली जो बैच है वो कब उत्पन्न हुई, उनकी मिनिमम आयु जो है निगोद की उतनी पहले वो उत्पन्न हुई थी, ये उसका अर्थ है। पर्याप्त बादर निगोद है, पर्याप्त अपर्याप्त कुछ भी हो सकता है ना उसमें, पर जहाँ अपर्याप्त उत्पन्न होते वो अपर्याप्त ही होते हैं। अब उनकी मिनिमम आयु जो अंतर्मूर्त ही लेना है, अंतर्मूर्त ही नहीं लगाया उन्होंने, अपन उनमें वो भी होगी ना, उनके शरीर अलग अलग होंगे तो जघन्य आयु वाले वहां उत्पन्न होंगे, बस इतना ही लेना है इसमें। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ क्षीण कषाय के अंतिम समय में जो आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण पुलविया, अभी पुलवियों की बात है, जो कि पृथक पृथक असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीरों से आपूर्ण है, आपूर्ण ने उससे सहित है, उनमें स्थित अनंतानंत निगोद जीवों के, अब यहां हम बादर निगोद वर्गणा किसको कहना उसकी चर्चा चल रही है, पहले में पहले कितने मरते हैं कितने शेष रहते हैं उसकी बात बताई, अब क्या कहा अंतिम समय में जो पुलवी कितनी शेष रहती है आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, और वो कैसी है, एक बंधन बद्ध है, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण तो निगोद के शरीर है। देखो क्या कहते हैं, क्षीण कषाय के अंतिम समय में जो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण पुलविया है, जो कि पृथक पृथक यानी एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीरों से वो आपूर्ण है, यानी उससे युक्त है, उससे भरे है, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद के शरीर है, उनमें स्थित, अब उन निगोद शरीरों में स्थित अनंतानंत निगोद जीवों के, इतने जीव है जो अनंतानंत विश्रसोपचय से युक्त कर्म और नौकर्म संघात है। अभी हर एक जीव का अपना कर्म और अपना नौकर्म जुदा जुदा है, नौकर्म ने उसे तेजस और उसके अपने अपने विश्रसोपचय, सबका कॉमन क्या है तो औदारिक शरीर और उसका विश्रसोपचय, वो कॉमन है हर एक के अपने अपने, इतने अनंतानंत जीवों के कर्म भी लेने और नौकर्म भी लेने, नौकर्म संघात है, वह सबसे जघन्य बादर निगोद द्रव्य वर्गणा है। बादर निगोद द्रव्य वर्गणा में ये सबसे जघन्य वाली बात कौन सी, क्षीण कषाय के अंतिम समय में वाली। अब इस बादर निगोद द्रव्य वर्गणा के स्थानों का कथन करते, स्थान कहने जघन्य से लेकर वो जो एक एक से बढ़ते हुए उसकी चर्चा है उसको स्थान कहेंगे। यहाँ अनंतानंत जीवों के अपने विसरसोपचय के साथ औदारिक शरीर परमाणु पुंज को पृथक स्थापित करके, क्या कहते हैं, अनंतानंद जीवों का अपने विसरसोपचय से शरीर औदारिक शरीर परमाणु पुंज वो अलग रखना, वो सब में तो कॉमन है ही है, पुनः उन्हीं सब जीवों के अपने विसर्गोपचय सहित तेजस शरीर परमाणु पुंज को और अपने विसर्गोपचय सहित कार्बन शरीर परमाणु पुंज को पृथक स्थापित कर इन छह पुंजों के ऊपर परमाणुओं की वृद्धि कर स्थानों की उत्पत्ति का कथन करते हैं। अलग अलग स्थान एक एक परमाणु से बढ़ते हुए कैसे लेना उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। अब 92 पेज पर आना, नेक्स्ट पेज। वो कॉमन है ना सबके लिए, हर एक का जुदा जुदा। एक अन्य जीव लो जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर एक विसर्गोपचय परमाणु से औदारिक शरीर के पुंज को अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है। क्या कहा? वो आया था क्षपित कर्मांशिक, क्षपित कर्मांशिक यानी कर्म तो मिनिमम है, और औदारिक के विसर्गोपचय में एक परमाणु उसका अधिक है, क्योंकि विसर्गोपचय तो जीव जीवराशि से अनंत गुणे हैं, उसमें एक परमाणु किसी का अधिक है, ऐसा जीव लिया। तो इसके यह अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। क्या कहना चाहते हैं? हमने पहले जो अनंत अनंत जीवों की बात की ना, देखो पेज नंबर 92 पर आए अभी हम, उसमें एक एक परमाणु अधिक क्रम से अभी बता रहे हैं। फिर से पढ़ते देखो कि पहले में पहले क्या किया, सबके मिलकर औदारिक का एक पुंज लिया, उसका विसर्गोपचय लिया, और हरेक के कार्बन और तेजस के अलग अलग लिए, शरीर भी और उसके विसर्गोपचय। अब यहाँ क्या लेना है, उसमें से एक जीव जो बाकी तो क्षपित कर्मांशिक से ही आया है, पर उसके विसर्गोपचय एक परमाणु ज्यादा है। आपका ये प्रश्न है, बादर निगोद वर्गना में जो क्षपित कर्मांशिक रूप से आया है, हाँ आगे क्या, उसके शरीर का यानी औदारिक का स्कंध, उसके विसर्गोपचय, तेजस का और कार्मान का शरीर और विसर्गोपचय, यानी सब में औदारिक ही कॉमन है, निगोद है ना ये। बारहवें गुणस्थान के अंत में जो है, हाँ
उसका शरीर ले लेना।
अच्छा अच्छा उसमें भी लेना पड़ेगा,
वो भी लेना पड़ेगा।
हाँ ना ना, पर निगोद सहित है, उसी के साथ वो निगोद उसके आधार से है ना, यानी क्षीण कषाय को लिया हमने। देखो देखो देखो, पहले हमने सबसे जघन्य किसको लिया, क्षीण कषाय वाला है, और उसके अंतिम समय में अंत में जितने बादर निगोद वहां है, तो वहां उस जीव के तो अपना तो है ही है, क्षीण कषाय वाले के अपना शरीर है, और उसके आधार से निगोद है, तो निगोद की भी सब राशियां लेनी है। हाँ उसका शरीर, इसलिए अन्य जीव लिया यहाँ पर। वो क्षीण कषाय वाला कौन सा लिया था, क्षपित कर्मांशिक से ही आया था, और उसके अनंत अनंत निगोदों के वो उसके अपने औदारिक शरीर और उसके अपने तेजस कर्मन सब लिए थे। हाँ आपका बादर निगोद, बाप रे देखो बादर निगोद वर्गना ने वहाँ निगोद भी है, और ये जो प्रतिष्ठित शरीर है उसका भी अपना ले लेना है, वहां पर उसका भी औदारिक तेजस कारमान लेना है, और अनंत अनंत जीवों के भी लेना है। क्योंकि देखो देखो बादर निगोद वर्गना किसको कहा था, जगन ने किसके, जरा पीछे लेना। देखो देखो फिर से देखते, क्योंकि जहाँ बादर निगोद वर्गना किसको कहेंगे, 84 पर पेज पर नीचे का पैराग्राफ निकालना, 84 पेज नंबर 84 नीचे में निकालो। देखो उन्होंने जगन्य कहाँ होते पूछा गया था, उसके लिए क्या बताते हैं, जो जीव क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, अनंतर गर्भ से लेकर 8 वर्ष और अंतर्मूर्त होने पर सम्यक और संयम को युगपत ग्रहण करके पुनः कुछ कम पूर्व कोटि काल तक कर्म की उत्कृष्ट गुण श्रेणी निर्जरा करके सिद्ध होने के लिए अंतर्मूर्त काल अवशेष रहने पर, यानी उसके 13वें 14वें का काल अंतर्मूर्त बाकी है, तब उसने क्षपक श्रेणी चढ़ी और 12वें के अंतिम समय में आ गया, क्षपक श्रेणी पर आरोहण किया। अनंतर क्षपक श्रेणी में सबसे उत्कृष्ट विशुद्धि के द्वारा कर्म निर्जरा करके क्षीण कषाय हुए इस जीव के, वो तो पहले समय में कितने जाते वो सब छोड़ दो अभी, अब आगे कहते हैं उसमें वो निगो पुल भी कितनी होती उसकी सब चर्चा की। उसके बाद उन्होंने देखो यहाँ, हाँ हाँ, परंतु मैं अभी उसके आगे का वाक्य बताते हैं। 86 पेज पर लास्ट नीचे से दो पैराग्राफ दो लाइन, यहाँ पर क्षीण कषाय जीव के शरीर की स्कंद संज्ञा है, वो स्कंद हुआ और वो स्कंद उसमें अंडर हाँ उसमें अंडर आवाज पुलवी और देह, तो ये स्कंद है ना, उसमें इतने इतने होते हैं वगैरह वगैरह सब बताए उन्होंने। यानी उस शरीर में अंडर पुलवी आवास वगैरह सब है, स्कंद स्कंद कहा, उसमें आवास है, उसमें अंडर है आवास है पुलवी है और देह है निगोद के देह है। यानी जो जीव अभी क्षीण कषाय का तो छोड़ो, हम अपनी बात करेंगे, यहाँ ये शरीर है वो स्कंद हुआ, उसमें असंख्यात लोक प्रमाण तो अंडर है और उसमें अंडरों के भीतर असंख्यात लोक प्रमाण तो आवास हो गए, उसमें पुलवी हो गए, वो पुलवी असंख्यात लोक प्रमाण ही होती है, ऐसा कुछ नहीं, क्षीण कषाय में कम भी हो गए, ये उन्होंने पहले चर्चा की थी। यानी पूरा एक स्कंद हुआ और उसको बादर निगोद वर्गना कहेंगे, और उसमें जो निगोद के जीव है उनके अपने अपने कर्म भी आए, अपने अपने उसके जो कुछ तेजस के विश्रसोपचय वो अनंत अनंत जीवों के वो भी उसी में गर्भित है। जो कुछ होगी तो सब मिलकर पुलविया कितनी बस इतना है, वो निकल कैसे गए, पुलवियों के समूह को तो आवास कहेंगे, आवासों के समूह को तो अंडर कहते हैं, निकल जाने की क्या बात है, उसमें संख्या कम होगी, सब मिलकर इतनी पुलविया शेष रही, वो उसमें बीच में हमने अंडर आवास की बात नहीं की कितने होते हैं उसकी चर्चा नहीं है, टोटल पुलवी कितनी होती बस इसकी चर्चा है, जैसे हिंदुस्तान में राज्य कितने हैं और प्रांत कितने, नहीं कितने शहर है उसकी चर्चा हम कर सकते हैं डायरेक्ट, इस तरह से पुलवी कितनी है तो अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है, तो ये सब मिलकर वहाँ उसका उसको हम यहाँ पर बादर निगोद वर्गना कहेंगे, ये जो टोटल जो है, यानी देखो यहाँ जो 91 पेज पर आते हैं आपके जो प्रश्न का उत्तर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, यहाँ क्षीण कषाय के अंतिम समय में क्या बाकी है, जो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण पुलविया है, कैसी है वो, उनमें पृथक पृथक असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीरों से आपूर्ण है, आपूर्ण है भरे हुए संपूर्ण है, उनमें स्थित अनंतानंत निगोद जीवों के जो अनंतानंत विश्रसोपचय से युक्त कर्म और नो कर्म संघात है, यानी उनका पूरा जुड़ा हुआ है ना अभी सब, वह सबसे जघन्य बादर निगोद द्रव्य वर्गणा है, ये समझ में आई बात। अब उसके स्थान बताएंगे। पहला हमने कौन सा लिया था, क्षीण कषाय। अभी उसमें भी गुणित कर्मोशिक क्षपित कर्मोशिक, वो क्षीण कषाय के अंतिम समय में क्षपित कर्मोशिक जीव लिया। अब उसकी सबसे जघन्य बात बताई। अब दूसरा एक क्षपित कर्मोशिक जीव ऐसा लिया कि उसके विसरस, उसके जो मूल शरीर है उसमें एक विसरसोपचय का परमाणु ज्यादा था। उसका क्षीण कषाय मुनिराज का अवतारिक शरीर उसके हाँ उसमें विसरसोपचय एक ज्यादा, शरीर के परमाणु उतने ही है, विसरसोपचय एक ज्यादा है। एक विसरसोपचय का परमाणु अधिक लिया। हाँ देखो फिर से पढ़ते 92 पेज पर हमें एक एक परमाणु के बढ़ते हुए सारे विकल्प देखना है। तो कहते एक अन्य जीव लो, पहला कौन सा लिया था उससे इसमें विसरसोपचय एक अधिक है, जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर एक विसरसोपचय परमाणु से औदारिक शरीर के पुंज को अधिक करके, औदारिक शरीर के परमाणु उतने ही है, विसरसोपचय एक अधिक है, क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है तो इसके यह अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। क्योंकि पहले तो हमने जो परमाणु की संख्या निकाली थी उसमें एक परमाणु अधिक है, तो इसको अपुनरुक्त कहेंगे। क्योंकि अनंतर पूर्व के स्थान से, यानी जो हमने पहले कंसिडर किया था वो जघन्य स्थान, उससे यहाँ एक परमाणु अधिक उपलब्ध होता है। इस जीव के यहाँ एक परमाणु एक्स्ट्रा है ये पूरे स्कंद में। पुनः एक अन्य जीव लो जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में दो विसरसोपचय परमाणुओं से औदारिक शरीर विसरसोपचय पुंज को अधिक करके स्थित है, तब उसके यह अन्य तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। पहला जघन्य स्थान, फिर एक परमाणु अधिक, दो परमाणु अधिक, विसरसोपचय में परमाणु बढ़ा रहे हैं। पुनः एक अन्य जीव तीन विसरसोपचय परमाणुओं से औदारिक शरीर विसरसोपचय पुंज को अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, उसके तब चौथा अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। पुनः चार विसरसोपचय परमाणुओं से औदारिक शरीर विसरसोपचय पुंज को अधिक करके जो अन्य जीव क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, उसके तब पांचवा अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। ये समझ में आती है ना बात। विसरसोपचय में एक एक परमाणु बढ़ा रहे हैं, अभी उसके यथा योग्य बढ़ने तक वो बढ़ाएंगे उसको। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक परमाणु को बढ़ाते हुए क्षीण कषाय के अंतिम समय में सब जीवों से अनंत गुणे औदारिक शरीर विसरसोपचय परमाणु की वृद्धि होने तक स्थान उत्पन्न करने चाहिए। देखो क्योंकि एक औदारिक शरीर का परमाणु उसके साथ जीवन से अनंत गुणे इतने तो विसरसोपचय परमाणु होते, फिर भी सब टोटल विसरसोपचय के पुंज में उन्होंने इतने बढ़ाए, ख्याल में आई ना। क्योंकि एक एक शरीर संबंधी जो होते उसमें एक 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 बढ़ाते होते, पूरे पुंज में जीव राशि से अनंत गुणे परमाणु बढ़ गए। हाँ ये पॉसिबिलिटी पहले बात आई थी ना, पॉसिबिलिटी संभावना सत्य कहते हैं। इनका क्या कहना है, ऐसे अगर अनंत जीव राशि से अनंत गुणे हैं और ऐसे विकल्प अभी तक हुए ऐसा अगर मानेंगे तो जीव राशि से अनंत गुणे हो जाएंगे, परंतु संभावना वही तो कह रहे हैं। वहाँ ये बात पहले उन्होंने बताई थी, ये संभावना सत्य कहते हैं, ये पॉसिबिलिटीज बता रहे, ऐसा अभी तक हुआ ऐसा नहीं कहेंगे। क्योंकि अभी तक सिद्ध कितने हुए, तो जीव राशि से अनंत वे भाग प्रमाण हुए, पर यहाँ संभावना सत्य की बात है। किसी किसी के ऐसा हो सकता है, मैंने हर स्थान हुआ ही ऐसा नहीं कहेंगे, पॉसिबिलिटी। पुनः एक अन्य जीव लो जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर जघन्य द्रव्य के ऊपर औदारिक शरीर पुंज में, अभी देखो पहले तो विसरसोपचयों को अन्य इतना बढ़ाया, अब क्या कहने, यानी मैक्सिमम पॉसिबल विसरसोपचय के परमाणु बढ़े। अब अन्य एक जीव लेना, उसमें क्या लेना, औदारिक शरीर का एक परमाणु अधिक करो, तो एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणे विसरसोपचय अपने आप एक्स्ट्रा ऐड हो ही जाते। तो ये पहले जो विसरसोपचय में बढ़ाते बढ़ाते जो संख्या आई थी, उतनी ही संख्या इसको विसरसोपचय नहीं बढ़ाते हुए और एक परमाणु औदारिक शरीर का बढ़ाते हुए उतनी संख्या उसके हो जाएगी, फिर इसमें विसरसोपचय बढ़ाओ बाद में। देखो तो पुनः एक अन्य जीव लो जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर जघन्य द्रव्य के ऊपर औदारिक शरीर पुंज में एक औदारिक शरीर परमाणु को बढ़ाकर पुनः औदारिक शरीर विसरसोपचय परमाणु प्रमाण विसरसोपचय पुंज को बढ़ाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, उसके तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। ये तो समझ में आवे ऐसी बात है, क्योंकि जीवों से अनंत गुणे औदारिक शरीर अनंतर पूर्व के स्थान के औदारिक विसरसोपचय पुंज के साथ इस स्थान का औदारिक शरीर विसरसोपचय पुंज समान होकर यहाँ के औदारिक शरीर पुंज में एक परमाणु अधिक उपलब्ध होता है। पहले तो विसरसोपचय को बढ़ाते बढ़ाते गए, अब विसरसोपचय जो बढ़ाए हुए विसरसोपचय उतना ही रखकर एक परमाणु बढ़ाया, क्योंकि एक परमाणु बढ़ाने से उसमें भी विसरसोपचय के आ ही गए, इस तरह से ले लेना। पुनः इसके ऊपर एक औदारिक विसरसोपचय परमाणु के बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होते हैं। अभी एक औदारिक शरीर का परमाणु बढ़ाए ना, अब विसरसोपचय को बढ़ाते जाओ। दो विसरसोपचय परमाणुओं के बढ़ने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, तीन विसरसोपचय परमाणुओं के बढ़ने पर अन्य पुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार सब जीवों से अनंत गुणे विसरसोपचय परमाणुओं की वृद्धि होने तक उत्तरोत्तर एक एक परमाणु को बढ़ाते जाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित होने पर अनंतर एक अन्य जीव लो जो ओग जघन्य द्रव्यों को दो औदारिक परमाणुओं से और दो बार बढ़ाए हुए विसरसोपचयों से अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। अभी समझ में आया, एक शरीर का पुंज बढ़ाना, उसका विसरसोपचय एक 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 से बढ़ाना मैक्सिमम बढ़ने तक, फिर क्या करना, फिर औदारिक शरीर का बढ़ाना, इस तरह से वो समानता को लेकर एक एक परमाणु बढ़ाते जाना। इस प्रकार इस क्रम से तब तक बढ़ाते जाना चाहिए जब जाकर अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र औदारिक शरीर परमाणुओं की, इन्हें औदारिक शरीर में परमाणुओं की कितनी बात होगी, तो इतने, और सब जीवों से अनंत गुणे उन्हीं के विसरसोपचय परमाणुओं की वृद्धि हो जाती है। यानी शरीर में कितने तक बढ़ा सकते हैं, तो अभव्यों से अनंत गुणे परमाणु तक हम उसमें बढ़ा सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि अंतिम समय में बढ़ाने का क्या प्रयोजन है, इतने क्यों बढ़ेंगे। गुणित की बात कहाँ है, औदारिक शरीर में कहाँ गुणित और क्षपित आए, सारे क्षपित ही है। औदारिक परमाणु एक तो एक समय प्रबद्ध जो होता है ना, एक समय प्रबद्ध, मान लेते योग दुगुना हुआ तो एक समय प्रबद्ध भी दुगुना हुआ। एक समय प्रबद्ध में अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण परमाणु होते हैं, इसलिए वहां तक बढ़ाने तक ले गए। हाँ, यानी विसरसोपचय में बढ़ाना है तो जीवों से अनंत गुणे बढ़ाना, और औदारिक शरीर के परमाणु बढ़ाने हैं तो अभव्यों से अनंत गुणे सिद्धों के अनंत विभाग तक बढ़ाते चले जाते। बढ़ाते हुए भी कितनी बार बढ़ावे, ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं, एक बादर निगोद जीव के जितने भी सिरसोपचय के साथ औदारिक शरीर परमाणु है उतनी बार बढ़ावे। शंका, एक जीव दो जीवों के विश्वसोपचय सहित औदारिक शरीर पुंज का आधार कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि एक ही जीव में असंख्यात क्षपित कर्मांशिक जीवों का औदारिक शरीर द्रव्य उपलब्ध होता है। क्या कहना चाहते हैं? औदारिक शरीर बढ़ाते बढ़ाते दो का मिलकर नहीं लिया है, एक ही जीव में इतने बढ़ा सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं कि जहाँ असंख्यात क्षपित कर्मांशिक जीवों के औदारिक शरीर का द्रव्य हो जावे उतना द्रव्य किसी के एक ही औदारिक शरीर में हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। फिर शंका पूछते हैं, यदि एक जीव में असंख्यात जीवों का द्रव्य संभव है तो बादर निगोद जगन्य वर्गणा संबंधी अनंत जीवों के औदारिक शरीर संबंधी दो पुंजों में एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के दो पुंज निश्चय से संभव है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? उन्होंने कहा यह क्षीण कषाय की जीव की बात चल रही है, तो कहते उसके तो एक ही जीव में इतने बढ़ाने परमाणु तो असंख्यात जीवों के द्रव्य वहां संभव है। शंकाकार पूछते हैं, यदि ऐसा है तो बादर निगोद जघन्य वर्गना यानी वो क्षीण कषाय का अंतिम समय क्षपित कर्मांशिक जीव वगैरह वगैरह सब कंडीशन उस संबंधी बादर निगोद जघन्य वर्गना संबंधी वह अनंत जीव कौन से है जो अंतिम समय में निगोद वाले जो छोड़कर जाने वाले है उसकी अपेक्षा उस संबंधी अनंत जीवों के औदारिक शरीर संबंधी दो पुंजों में एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के दो पुंज निश्चय से संभव है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते? यानी वहां जो निगोदों का औदारिक शरीर का पुंज लिया तो ऐसा कहो ना सबका मिलकर जितने होते हैं उसका एक जीव में संभव है, वहां सबके दो पुंज करो। फिर से देखो, वहां जो दो पुंज हो तो ऐसे एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के दो पुंज निश्चय से संभव ऐसा क्यों नहीं कहते? यानी वहां जितना था उसका एक ही जीव के हो गया ऐसा क्यों नहीं कहते? उसका उत्तर सुनेंगे तो शायद पता चलेगा, तो नहीं ग्रहण करते। क्षपित कर्मांशिक जीव असंख्यात लिए और इनका प्रश्न है निगोदों को अनंत है वो अनंत जीवों के दो पुंज करो और उतना ही एक जीव के होता है ऐसा कहो, तो वैसा नहीं कथन कर रहे, ये कहना चाहते वो क्षीण कषाय के मुनिराज के औदारिक शरीर को ही बढ़ाया है बात, क्योंकि उसके विकल्प बता रहे। अभी हम कहाँ तक आए, वो मुनिराज के औदारिक शरीर के पुंज बढ़ा रहे हम, एक 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 बढ़ाए। अब आगे बढ़ते हैं, पुनः एक अन्य जीव लो जो पहले बढ़ाए हुए द्रव्य के साथ औदारिक शरीर को अधिक करके पुनः यानी अभी औदारिक और उसके विश्रसोपचय मैक्सिमम तक पहुंचे, अभी क्या करना? हाँ, तेजस शरीर के विश्रसोपचय पुंज में एक परमाणु को बढ़ाकर स्थित है। अभी ऐसे जीव के तेजस में एक परमाणु बढ़ाना, तब उसके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, क्योंकि अनंतर पूर्व के स्थान को देखते हुए जब तक हम बढ़ाते हुए आए थे औदारिक शरीर और उससे सब उसके कंपैरिजन में यहाँ एक परमाणु अधिक उपलब्ध होता है। यहाँ तक समझ में आई? पहले औदारिक पहले विश्रसोपचय क्या बढ़ाया? औदारिक शरीर बढ़ाया एक परमाणु, फिर विश्रसोपचय, फिर औदारिक शरीर का परमाणु, फिर विश्रसोपचय, इस तरह से दोनों ही मैक्सिमम तक पहुंच गए। अब वो मैक्सिमम रखते हुए तेजस का एक परमाणु बढ़ाना विश्रसोपचय का।
तो
बादर निगो द्रव्य वर्गणा की जिस शरीर के आधार से बादर निगो है उसका पूरा एक स्कंद ले रहे हैं। ना ना, पहले अनंत वो विश्वसोपचय बढ़ाए तब जाके औदारिक शरीर का एक परमाणु बढ़ा तो वो उसके समान हो गया, क्योंकि इसके बढ़ाने के साथ इसका अपना विश्वसोपचय साथ में आएगा। देखो मान लेते, पहले औदारिक शरीर के 10 परमाणु थे और 10 के साथ विश्वसोपचय हर एक के साथ 100-100 थे, तो 10 × 100 कितने हुए? 1000 हुए। तो 100-100 थे ना, तो उसमें 100-100 में हमने इस तरह से बढ़ाया, पहले कितने थे? 10 परमाणु औदारिक के थे, तो औदारिक के 10 परमाणु में वह हमने 100 के बदले सबके मिलकर कितने हुए थे? 1000 हुए थे। 1000 में 1000 एक, 1000 दो, 1003 बढ़ाए तो 1100 तक बढ़ाए, यानी 10 में 1100 हो गए। अब क्या करना, एक अन्य जीव लिया जिसमें 11 औदारिक शरीर के 11 परमाणु है, तो 11 के साथ उसका अपना 100 मिल गया ना, तो वो 1101 हुआ। इस तरह से लेना है, फिर उसमें विश्वसोपचय और 100 बढ़ाना, 1200 तक लेना है, फिर वो शरीर का एक परमाणु बढ़ाना, उसके अपने विश्वसोपचय मिनिमम तो आएंगे ही आएंगे, इस तरह से उसको बढ़ाते चला जाना। देखो फिर हमने क्या किया, तेजस के विश्वसोपचय बढ़ाए, फिर तेजस का परमाणु बढ़ाएंगे, जैसे अभी हमने 10 और 100 की बात की थी वैसे वहां समझना। देखो 94 पेज पर बीच वाला पैराग्राफ चौथी लाइन, पुनः पूर्वोक्त स्थान में 2 तेजस शरीर विश्वसोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ाने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है, समझ में है ना, थोड़ा इमेजिन करना, विश्वसोपचय बढ़ाते 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 फिर मूल शरीर का एक परमाणु बढ़ा, 3 तेजस शरीर विश्वसोपचय परमाणु पुद्गलों के बढ़ाने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार 1 से लेकर उत्तरोत्तर एक एक परमाणु तब तक बढ़ाना चाहिए जब जाकर सब जीवों से अनंत गुणे तेजस शरीर विश्वसोपचय परमाणुओं की वृद्धि हो लेती है। ख्याल में आई बात, विश्वसोपचय में कहाँ तक बढ़ाना, जीवों से अनंत गुणे, और मूल शरीर में जो उसका प्रमाण है उतने बढ़ाएंगे, वो भी अभिवन से अनंत गुणे वाली बात हो जाती है। देखो अनंतर नीचे का पैराग्राफ, एक अन्य जीव लो जो औदारिक शरीर के 2 पुंजों में, एक जीव संबंधी औदारिक शरीर के 2 पुंज बढ़ाकर तेजस शरीर को 1 तेजस परमाणु से अधिक करके तथा 1 तेजस शरीर के परमाणु से संबंध रखने योग्य और पहले के समान बढ़ाए हुए अनंत परमाणु प्रमाण तेजस शरीर विश्वसोपचयों को बढ़ाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब उसके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है कारण शुभ में। इन्हें पहले औदारिक शरीर के 2 पुंज बनाए थे, उसमें एक जीव के शरीर के 2 पुंज बढ़ाए, यानी वो अधिक किया और तेजस का फिर बढ़ाते गए इस तरह से।
अभी तक हम लोग क्षीण कषाय के अंतिम समय
थे। हाँ, क्षीण कषाय का अंतिम समय अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा बता रहे हैं। अनंतर एक अन्य जीव लो जो तेजस शरीर को 1 विश्वसोपचय परमाणु अधिक करके स्थित है, उसके तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। पुनः 2 विश्वसोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। 3 विश्वसोपचय परमाणु पुद्गलों की चाहिए को दिख रहा है की वृद्धि होने पर अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार 1 तेजस शरीर परमाणु से संबंध योग्य सब जीवों से अनंत गुणे परमाणु की वृद्धि होने तक उत्तरोत्तर एक एक परमाणु बढ़ाना चाहिए। पूरे पुंज में इतना बढ़ाना चाहिए, कितना, जो एक तेजस के परमाणु के साथ बनते उतना सबके टोटल में मिलकर बढ़ाना है। अनंतर एक अन्य जीव लो जो दो तेजस परमाणुओं से तेजस शरीर को अधिक करके दो तेजस शरीर परमाणुओं के योग्य विश्रसोपचय परमाणुओं से तेजस शरीर विश्रसोपचय पुंज को अधिक करके क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब उसके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। ये समझ में आती है बात, क्योंकि वाक्य बड़े बड़े हैं। पहले विश्रसोपचय को इतना बढ़ाना मैक्सिमम, फिर तेजस शरीर को बढ़ाना, उसके साथ उसके अपने विश्रसोपचय आते ही आते हैं, तो पहले के समान उसमें एक से बढ़ता है। इस क्रम से तेजस शरीर पुंज में, देखो शरीर के पुंज में अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र तेजस शरीर परमाणुओं की वृद्धि हो जावे, और विश्रसोपचय में कितने, तथा सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणुओं की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए। एक एक परमाणु बढ़ाना और विश्रसोपचय में जीवों से अनंत गुणे वाले विकल्प लेना। वृद्धि होते हुए भी कितने परमाणु वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं कि एक बादर निगोद जीव के तेजस शरीर में विश्रसोपचय सहित जितने परमाणु होते हैं उतने परमाणु वृद्धि को प्राप्त होते हैं। पुनः एक अन्य जीव लो, अभी ये तो क्षीण कषाय के मुनिराज का अपने शरीर की बात चल रही, उसके अपने तेजस शरीर कारमान शरीर, अभी कारमान को लिया नहीं, औदारिक तेजस कारमान की बात हो जाएगी, निगोदों के बढ़ाए नहीं है उसमें। पुनः एक अन्य जीव लो जिसने इस प्रकार औदारिक शरीर और तेजस शरीर की वृद्धि की है, अब कारमान में आते हैं, तथा जो कारमान शरीर विश्रसोपचय पुंज में एक परमाणु अधिक करके अंतिम समयवर्ती क्षीण कषायी हुआ है, उसके तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। ये सारे क्षीण कषाय के अंतिम समय में ही घटित कर रहे हैं। पहले हमने औदारिक के विश्रसोपचय बढ़ाए, एक एक परमाणु औदारिक का बढ़ाया, वो फुल एकदम कंप्लीट पैक हुआ तो हमने तेजस के विश्रसोपचय बढ़ाए, उसका एक एक परमाणु बढ़ाया। अब वो मैक्सिमम सेचुरेशन को ले लिया, अभी हमने कारमान का बढ़ाना शुरू किया। देखो देखो, औदारिक और तेजस की वृद्धि की है, तथा जो कारमान शरीर विश्रसोपचय पुंज में एक परमाणु अधिक करके अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाय हुआ है, तब उसके अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। पुनः दो कारमान विश्रसोपचय पुद्गलों की वृद्धि होने पर, अभी कारमान का विश्रसोपचय बढ़ा रहे, तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। तीन विश्रसोपचय पुद्गलों की वृद्धि होने पर चौथा अनुपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार एकोत्तर के क्रम से, एकोत्तर ने एक एक बढ़ाते हुए सब जीवन से अनंत गुणे कार्मण विश्रसोपचय परमाणु बढ़ाने चाहिए। इस प्रकार जानकर कार्मण शरीर पुंज में अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र कार्मण शरीर परमाणुओं की, कार्मण का भी एक एक परमाणु बढ़ाना, ये सबका प्रमाण क्या है, अभव्यों से अनंत गुणे, औदारिक शरीर के भी यही प्रमाण, परंतु तेजस का उससे अनंत गुणा वाला अभयों से अनंत है, और कारमान के लिए उससे भी अनंत गुणा ऐसा अभयों से अनंत गुणा है। सबके लिए कथन एक ही है, परंतु हर एक में जो अभयों से अनंत गुणा वाला प्रमाण है वो अनंत गुणा वाला है। तो इतने कारमान शरीर परमाणुओं की तथा सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणुओं की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए। वृद्धि को प्राप्त होते हुए कितनी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं एक जीव में जितने कर्म परमाणु और कारमान शरीर विश्रसोपचय परमाणु पुद्गल होते हैं उतने परमाणु वृद्धि को प्राप्त होते हैं। एक जीव में देखो कितने अनंत अनंत है, तो उतने वो सारे विकल्प होंगे उसके भी। अनंतर एक अन्य जीव लो जो पूर्व विधि से आकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में जघन्य बादर निगोद वर्गणा के ऊपर एक जीव को अधिक करके स्थित है। निगोद जीव एक एक्स्ट्रा आया, एक निगोद जीव एक्स्ट्रा आया। तब यह स्थान पुनरुक्त है, पुनरुक्त है क्योंकि उसमें वो सारे जो हमने कारमान में वगैरह बढ़ाए तो उसने उसका एक जीव का उसमें आ गया, क्योंकि पहले के अनंतर पिछले स्थान के औदारिक तेजस और कारमान शरीरों के पुंज से यहाँ के उनके छह पुंज सदृश उपलब्ध होते। वहाँ पहले हमने क्षीण कषाय मुनिराज के ही सब बढ़ाए थे, अब यहाँ निगोद एक बढ़ाया तो उसके छह पुंज है ना उसके अपने, उससे इनका समान हो जाता है, इसलिए उसको पुनरुक्त कह दिया। उसी में गर्भित है उसको। शंकाकार पूछते, पहले के जीवों से सांप्रतिक वर्गणा संबंधी एक जीव अधिक है, इसलिए इस स्थान को अपुनरुक्त क्यों नहीं कहते? तो उसको अपुनरुक्त कहो ना, क्योंकि एक निगोद जीव उसमें एक्स्ट्रा आ गया है। समाधान, नहीं, क्योंकि जीव की बंधनीय संज्ञा नहीं है। क्या कहा? बंधनीय में जीवों की संख्या को नहीं ले रहे हम, परमाणुओं की पुंज को ले रहे, पुद्गलों की ही बंधनीय संज्ञा है। परंतु जीव पुद्गल नहीं हो सकता, क्योंकि अमूर्त को मूर्त रूप होने में विरोध आता है। ये बंधनीय जो बांधे जाते हैं वो वहाँ कर्म और नौकर्म को यहाँ बंधनीय कहा है, इसलिए उसमें जीव को इंक्लूड नहीं करना है। हाँ, पुनः एक अन्य जीव लो जो सांप्रतिक बादर निगोद वर्गणा के ऊपर एक औदारिक शरीर विश्रसोपचय परमाणुओं को बढ़ाकर क्षीण कषाय के अंतिम समय में स्थित है, तब अन्य अपुनरुक्त स्थान होता है। दूसरे परमाणु की वृद्धि होने पर दूसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। अब देखो, वो एक जीव ज्यादा लिया ना, तो उसमें फिर उसके साथ ही और एक एक एक्स्ट्रा लेते हैं। तीन विश्रसोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर तीसरा अपुनरुक्त स्थान होता है। चार विश्रसोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने पर चौथा अपुनरुक्त स्थान होता है। इस प्रकार देखो, यहाँ पहले क्या किया, इसके छह पुंज बढ़ाए और इतना ही द्रव्य बिना कुछ बढ़ाते हुए एक जीव अधिक करने पर हुआ था, एक निगोद जीव को अधिक करने पर। अभी हमने क्या किया था, पहले क्षीण कषाय लिया था, जघन्य बादर निगोद वर्गणा वाला लिया था, उसमें से एक एक परमाणु बढ़ाते हुए ने और शरीर में विश्रसोपचय में शरीर में विश्रस छह पुंज बढ़ाए, तो वो किसके समान है? तो वहाँ जो क्षीण कषाय के जघन्य बादर निगोद वाला था उसमें बाकी कुछ बढ़ाया नहीं, केवल निगोद का एक जीव बढ़ाया। तो इसके इतने विकल्प हुए छह राशियों के, वो एक जीव बढ़ाने से उतना ही हो जाता है। वो पुनरुक्त लिया, पुनरुक्त लिया तो उसको ऐसा ही लिखा, एक निगोद जीव अधिक है। अब पहले के समान इसमें फिर औदारिक के विश्रसोपचय बढ़ाए, औदारिक बढ़ाओ, तेजस के विश्रसोपचय तेजस बढ़ाओ, इस तरह से। यानी उसको एक जीव का एक्स्ट्रा रखते हुए फिर पहले से ये गाड़ी चालू करो, तो एक ही पुनरुक्त स्थान मिलते चले जाएंगे। इस प्रकार सब विश्रसोपचय परमाणु पुद्गलों की वृद्धि होने तक ले जाना चाहिए। 97 पेज। होते हुए भी वे कितने होते ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं, एक औदारिक शरीर परमाणु के विश्रसोपचय मात्र होते। एक औदारिक शरीर के साथ कितने विश्रसोपचय थे? जीव से अनंत गुणे, इतना टोटल परमाणु पुंज में उसको बढ़ाना। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए स्थान से एक औदारिक परमाणु के विश्रसोपचय को बढ़ाकर स्थित हुआ अंतिम समयवर्ती क्षीण कषाय स्थान अपुनरुक्त होता है, कारण सुगम है। इस प्रकार इस विधि से औदारिक शरीर के दो पुंज, दो पुंज है ना, एक शरीर और उसका विश्रसोपचय, ये दो पुंज, हाँ, तब तक बढ़ाने चाहिए जब तक सब जीवों से अनंत गुणे विश्रसोपचय परमाणु तथा अभवियों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण औदारिक शरीर संबंधी परमाणु वृद्धि को नहीं प्राप्त हो जाते। ये जैसे पहले हमने देखा था वही बात यहाँ उन्होंने रिपीट की है। ऐसा होते हुए भी वे कितने होते हैं? ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं, एक बादर निगोद जीव के औदारिक शरीर में जितने औदारिक शरीर के परमाणु और उसके विश्रसोपचय परमाणु होते हैं, तन मात्र होते हैं। यानी वृद्धि कितनी हुई, ये प्रश्न पूछा। तो इतनी वृद्धि हुई कि वो उसके निगोद के एक शरीर में जितने विश्रसोपचय परमाणु उतनी वृद्धि हुई। इसी प्रकार एक बादर निगोद जीव के द्वारा संचित हुए तेजस शरीर और कार्मन शरीर के चार पुंज, यानी वो शरीर और उसके विश्रसोपचय पुंज प्रमाण द्रव्य के प्राप्त होने तक अपने अपने विश्रसोपचय के साथ तेजस शरीर पुंज को और कार्मन शरीर पुंज को अनुपूर्वी क्रम से बढ़ाना चाहिए। अनुपूर्वी ने पहले तेजस के विश्रसोपचय बढ़ाओ, तेजस शरीर बढ़ाओ, विश्रसोपचय बढ़ाओ, तेजस शरीर बढ़ाओ, उसके बाद कार्मन के बढ़ाओ। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुआ जीव तथा क्षीण कषाय के अंतिम समय में जघन्य बादर निगोद वर्गणा के दो बादर निगोद जीवों से अधिक करके, अब ये इतना सब बढ़ाया कब? पहले में पहले बादर का एक ही जीव निगोद का एक जीव बढ़ाया था और फिर वो क्षीण कषाय मुनिराज के सब एक एक परमाणु बढ़ाते बढ़ाते चले गए। इतना बढ़ाया कि अभी दो बादर निगोद जीवों के और बिना बढ़ाए हुए वो समान हो जावे। तो उसके समान हो जाए, तो इसके समान इतना बढ़ाया कि दो जीव ऐड करेंगे तो उतना ही हो जाता। यानी इनके छह पुंज बढ़ाए तब जाके एक निगोद बढ़ाने पर उसका जो कर्म और तेजस और जो कुछ औदारिक उसका इतना बढ़ेगा, क्योंकि पूर्वोक्त स्थान में क्रम से बढ़ाकर स्थित हुआ द्रव्य यहाँ के दो जीवों में उपलब्ध होते हैं। वहां जितना एक्स्ट्रा बढ़ाया है वो दो जीवों का मिलकर उतना हो जाता है। एक चार लाइन पढ़ते हैं। पहले के जीव को छोड़कर तथा इसे ग्रहण कर, यानी इसे ने दो जीव अधिक हो गए, इसके ऊपर पहले के समान एक अन्य जीव बढ़ाना चाहिए। पहले के समान यानी पूरा छह पुंज बढ़ाओ और फिर एक जीव और बढ़ाओ, यानी यहाँ छह छह पुंज बढ़ाओ, एक एक जीव बढ़ाओ, छह छह पुंज बढ़ाओ, एक एक जीव बढ़ाओ, इस तरह से। इस प्रकार स्थान और शास्त्र के अविरोध से, यानी अपने शास्त्र में कोई विरोध नहीं आवे इस पद्धति से, उत्तरोत्तर एक एक जीव को बढ़ाते हुए अनंतानंत कर्म और नौकर्म परमाणु पुद्गलों से व्याप्त सब जीव प्रदेश है, जिनके क्या कहा, यानी जीवों के क्या है, सभी जीव प्रदेश अनंतानंत कर्म और नौकर्म परमाणुओं से व्याप्त है। ऐसे कितने जीव बढ़ाना चाहिए? हमने देखो एक जीव बढ़ाया, दो जीव बढ़ाया, तीन जीव बढ़ाया, ऐसे पल्लवम के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव बढ़ाने चाहिए। पुलविया तो अवली के असंख्यात वे भाग थी, पर एक एक पुलवी में जीव अनंत अनंत थे, तो कितने जीव बढ़ाने चाहिए? तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव बढ़ाने चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर पुनः यहाँ के अनंत जीवों के औदारिक तेजस और कार्मन शरीरों के क्रम से छह पुंज अपने सर्वोत्कृष्ट प्रमाण को प्राप्त होने तक बढ़ाना चाहिए। अब यहीं हम रुकते हैं। यानी एक एक प्रदेश कैसे पुंज परमाणु कैसे बढ़ाना चाहिए, इसका सब उन्होंने विधान कर दिया। अब बाकी शेष कुछ बातें कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कहलो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो। अश्विन।